We welcome you.
हम यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का महासहायक संस्था सभा में आपका स्वागत करते हैं। हम सम्मान देते हैं प्रधान थॉमस एस मॉन्सन को, जो इस सभा के अध्यक्ष हैं। उनके साथ हैं उनके सलाहकार प्रधान हेनरी बी आयरिंग और डिएटर एफ उक्टॉफ। मैं हूं जूली बी बैक, सहायक संस्था का महाप्रधान। मेरे साथ है मेरे दो सलाहकार बहन सिल्विया एच ऑलरेड और बारबरा थॉमसन। हम स्वीकार करते हैं एल्डर नील एल एंडरसन, जो 12 देवदूतों के परिषद के हैं, एल्डर क्रेग सी क्रिस्टेंसन, जो 70 के हैं, और बिशप एच डेविड बर्टन, जो गिरजाघर के अध्यक्ष बिशप का है, की उपस्थिति। मंच पर सहायक संस्था महाबोर्ड के सदस्य और जवान महिलाओं और प्राथमिक संस्था की महाअध्यक्षताएं भी हैं। हम इस ऐतिहासिक सभा में आपके उपस्थिति से प्रसन्न हैं और धन्यवाद देते हैं उन सहायक संस्था बहनों और नेताओं को दुनिया भर में, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है इस महान कार्य में। दुनिया भर में कोई और ऐसी संस्था नहीं है जो इस दर्जे की है। हम उन सब दो को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस सभा में संगीत प्रदान किया। गायक मंडली में ईगल माउंटेन और सराटोगा स्प्रिंग्स यूटा के स्टेट्स की सहायक संस्था बहनों, और जो एमली वर्डली से निर्देशन ले रही है, और साथ में ऑर्गन पर बॉनी गुडलिफ और लिंडा मार्गरेट्स। सभा की शुरुआत होगी गायक मंडली के गीत से द मॉर्निंग ब्रेक्स, जिसके बाद प्रार्थना दिया जाएगा बहन बारबरा सी ब्रैडशॉ द्वारा।
Oh,
Our Father in heaven,
हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आते हैं आपके सामने इस सभा के बिगिनिंग में हमारे नबी के नीचे. हम बहुत आभारी हैं प्रेजेंट मॉनसन के लिए और सिस्टर मॉनसन के लिए, और मांग उन्होंने उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं उनके बेटे पोताओं के लिए. प्रेसिडेंट आयरिंग के लिए और प्रेसिडेंट उक्तोर के भी आभारी हैं. हम आशीर्वाद मांगते हैं उनके उनको और उनके परिवारों के लिए. हम आभारी हैं हमारे प्रधान प्रेसिडेंट पैक के लिए भी. हम बहुत आभारी हैं हमारे गॉस्पल के सुसमाचार में और नबी जोसेफ स्मिथ के लिए. हम रीफ सोसाइटी के लिए आभारी हैं और हमारे संसार की बहनाओं के लिए, और हम उनके लिए भी आभारी हैं जो हमारे पहले जा चुके हैं. हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके प्रिय बेटे के लिए, उसके अटोनमेंट के लिए, और हम आशीर्वाद मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ होंगी, कि हम हमारी बयाने और भी बढ़िया होंगे. हम प्यार करते हैं आपसे और हम ये यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन.
सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद. अब मेरा सौभाग्य होगा भाषण देने का. मेरे विचारों के बाद गायक मंडली हमें सुनाएंगी स्वीट एज द वर्क. बहन सिल्विया एच ऑलरेड इसके बाद हमसे बातें करेंगी. उसके बाद में आएगी बहन बारबरा थॉम्पसन. गायक मंडली और सभा इसके बाद हमारे साथ गाएंगे हार्क ऑल यी नेशंस.
ये मेरी सौभाग्य है कि मैं इस उत्साहिक सभा में तुमसे बातें कर रही हूँ. हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम साथ हैं. मेरी सहायक संस्था के मध्य अध्यक्षता के सेवा के दौरान में तुम्हारे लिए बहुत प्यार उभर रहा है इस गिरजा के सहायक संस्था के बहनों, और प्रभु ने मेरी समझ को बढ़ाई की है. वो हमारे लिए कैसा महसूस करता है, वो हमसे क्या चाहते हैं. मैंने इस संदेश का नाम ये रखा है. मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी नातिन और पोती संस्था को समझे. मेरी बड़ी नातिन व्यक्तिगत आगे की और पढ़ने की कार्य में बहुत व्यस्त है, और नर्तितक के सच्चे आधंतों और लक्ष्यों ने सिखाने में बहुत ही जल्द वो और उनके साथी इस महान दुनिया भर के बहनों की जिम्मेदारी को उठाएंगी. मैं ये आशा करती हूँ कि उन सभी को जो इस संदेश को पढ़ते ये सुनते हैं अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रभु के मन में क्या इरादा था जब उन्होंने अपनी पुत्रों के लिए सहायक संस्था को बनाया था. मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी नातिन और पोतिन ये समझें कि आज का सहायक संस्था उसी तरह से संगठित हुई है जैसे पुराने समय में, जब उद्धारकर्ता ने अपने गिरजा को नया नियम के समय पर संगठित किया. महिलाएं उनके देखरेख में महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी. उसने मार्था और मैरी को बहन किया, जो उसे के दो बही बहुत ही समर्पित चेले थे. मार्था के घर पर जब मार्था ने उसको सुना और अपने परंपरा के समय के तरीका से उसका सेवा किया, उसने ये देखा कि वो उसकी मदद करे ये देखने में कि वो और भी ज्यादा करे. उसने मार्था और मैरी को ये चुनने में मदद किया कि वे वही उत्तम मार्ग को जाने जो उनसे लिए जा सकता. ये अच्छी टिप्पणी प्रभु के देखरेख के सेवा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है, और फिर बाद में नया नियम में मार्था की प्रभु के लिए देवता की सच्ची गवाही हमें कुछ दृष्टि देती है. जैसे हम और आगे नए नियम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि देवदूतों ने प्रभु के गिरजे को स्थापित किया. हम उन विश्वासी महिलाओं के बारे में भी सीखते हैं जिनके शिष्यता गिरजाघर की तरह बढ़ती है. पॉल ने इफिसियस और फिलिपी जैसे स्थान पर नारी चेलाओं पर बातें की, मगर जब प्रभु के सच्चे गिरजे खो गए थे, सिद्धांत छोड़ गए, शिष्यता के रूप भी खो गए थे. जब प्रभु ने नबी जोसेफ स्मिथ के द्वारा फिर अपने गिरजे को पुनर्स्थापित किया, उसने फिर महिलाओं को शिष्यता के रूप में साथ जोड़ा. कुछ महीने बाद जब गिरजे को अब चारिक रूप से संगठित किया था, प्रभु ने ये बताया कि एमा स्मिथ को गिरजा में नेता और अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाए, और अपने पति को जो नबी थे उसके नियुक्ति में प्रभु की मदद करने में उसके राज्य को बनाने में उसे मार्गदर्शन मिली कि वो अपने विश्वास और व्यक्तिगत नेक को कैसे बढ़ाए, किस तरह अपने परिवार और घर को मजबूत करे और किस तरह दूसरों की सेवा करे। मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी नातियों और पोती उस दिन से ये जान जाने जब सुसमाचार इस पीढ़ी के समय पर पुनर्स्थापित हुआ था, प्रभु को अपने सच्चे चेलों की तरह कार्य करने के लिए विश्वासी महिलाओं की जरूरत है। सिर्फ एक उनका असाधारण दान का उदाहरण था प्रचारक के कार्य। पहले के गिरजे की महान भराई होती थी क्योंकि विश्वासी पुरुष अपने परिवारों को छोड़कर दूर अनजान स्थानों पर जाने के लिए तैयार थे और सुसमाचार को पढ़ाने के लिए हानि और मुसीबतों जो झेलते थे। फिर भी ये पुरुष जानते थे कि उनके मिशन महिलाओं की पूरी विश्वास और उनकी जिंदगी में उनके साथ के साथ ही सफल होंगी जिन्होंने घरों और पेशों को बनाए रखे और अपने परिवारों प्रचारकों के लिए पैसे कमाए। बहनों ने उन हजारों ने जोड़े हुए के बारे में भी ख्याल रखा जो उनके बिरादरी में जमा हुए थे। वे जिंदगी से नए गहराई से समर्पित हुए प्रभु की राज्य को बनाने में मदद करें। मैं आशा करती हूं कि मेरी नाती और पोती ये समझे कि प्रभु ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को प्रेरित किया कि गिरजा के महिलाओं को संगठित करे पुरोहित के नीचे पुरोहित के रूप के बाद और उनके सिखलाया किस तरह वे पुरोहिती के आशीर्वादों और उपहारों से फायदा उठा सकते हैं। जब सहायक संस्था सरकारी तौर से स्थापित हुआ, एमा स्मिथ नेता ही बनी रही। उसे संगतों के प्रधान घोषित किया गया जो सलाहकारों के साथ उसके साथ अध्यक्षता में सेवा के लिए सादा मतदान के बजाय जो गिरजा के बाहर संगतों में प्रसिद्ध है, ये अध्यक्षता प्रकट होने क्रिया से नियुक्ति होती है। उन महिलाओं से बनी रहेगी जो नेतृत्व करेंगे और पुरोहित के नेताओं से नियुक्ति करने से अपने सेवा की नियुक्ति के लिए। इस प्रकार परमेश्वर बुलाता है भविष्य सूचना से और जिनके पास साधी अधिकार है उनके द्वारा सर पर राहत रखकर पुरोहित के नीचे संगत होने से अध्यक्षता को प्रभु से मार्गदर्शन मिलती है, आज्ञा मिले और उसे भविष्यवक्ता जो विषय कार्य के लिए और शाहक संस्था के संगतों को प्रभु के गुण के भंडार समय और साधन मिला था। सब विवेक और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पहले सहायक संस्था की महिलाओं थी, उन्हें अनुमति मिली थी पढ़ने जाने के लिए प्रेरित और बहनों को चेला बनना प्रभु के मुक्ति के कार्य को संगठित करने के लिए। उनके पहले सभा में बहनों को सहायक संस्था के लक्ष्य के मार्गदर्शन को सिखलाया गया कि विश्वास को बढ़ाने और व्यक्तिगत नेकता परिवारों और घरों को मजबूत करना और उन्हें ढूंढना जो जरूरतमंद है। मैं आशा करती हूं कि मेरी नातिन और पोतिन ये समझेगी कि सहायक संस्था का संगठन एक मुख्य भाग था संतुन को सौभाग्य आशीर्वादों और उपहारों के लिए तैयार होने में जो सिर्फ मंदिर में प्राप्त होती है। प्रधान जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने सहायक संस्था को ये पढ़ाया वो एक विश्व ईश्वर का राज्य का मुख्य भाग है इस धरती पर और इससे इस तरह और किया जाता है कि वो अपने विश्वासी सदस्यों को मदद करते हैं हमारे पिता के राज्य में अनंत जीवन को प्राप्त करने में। हम ये महसूस करते सकते हैं बहनों के लिए कैसा था उन समय जोसेफ स्मिथ के रेड ब्रिक दुकान पर उन्हें पहले सहायक संस्था के सभाओं में पढ़ाई की और हर करे हुए जहां मंदिर बन रहा था जब भविष्य उन्हें पर। मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी नातिन और पोती मंदिर के मूल को समझे जिसे पहले के साथ संस्था के बहनों ने किया था जिन्होंने विश्वास किया था कि मंदिर के आशीर्वाद सभी अंतिम दिनों के संतों के महिलाओं के लिए सबसे महान उपहार और महान लक्ष्य था। मैं आशा करती हूँ कि पहले के साथ संस्था की बहनों की तरह मेरी नातिन और पोती हर समय पर्याप्त मात्रा में बड़े हो चुके हो ताकि मंदिर के पवित्र वादों को बनाए और निभा सकें। मंदिर के आशीर्वादों से के शक्ति से बढ़ जाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त होगा ईश्वर के ज्ञान का चाबी। पुरोहिती के धर्म विधि जो सिर्फ मंदिर में प्राप्त होते हैं उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा पवित्र रहने के लिए आनंद जिम्मेदारी और वो वादा करते हैं विश्वासी चेला बनकर रहेंगे के लिए। मैं आभारी हूँ प्रभु के एक आत्मिक कार्य से कि सहायक संस्था को संगठित किया गया था महिलाओं को एक दूसरे की मदद से तैयार करने की जिम्मेदारी देने के लिए। पुरोहित के महान आशीर्वादों को मंदिर के धर्म विधि और वादों से प्राप्त करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी नातिन और पोतिन सहायक संस्था की महान दुनिया भर के बहन पर की जरूरी प्रभाव और शक्ति को समझे। सन 42 से गिरजे 90 से भी आगे बढ़ चुकी है और सहायक संस्था 175 से भी ज्यादा देशों में पाया जाता है, जहां बहनें 80 से भी ज्यादा भाषाओं में बातें करती है। सभी सफ्ते नए वार्ड्स और शाखा संगठित होती है और नए सहायक संस्था बढ़ती हुई भावना से साथ मिलती है, दुनिया भर में फैलती है। जब सहायक संस्था कुछ ही नंबरों में थी और यूटा में ही संगठित हुई थी, उनके नेताओं को अपने संगठन और शिष्यता को स्थानीय दल के कार्यक्रमों और सहायक कार्य में ज्यादा संगठित रहना चाहिए। उन्होंने घरों के कारोबार को बनाया और अस्पताल और दाने रखने के घरों को बनाया के लिए योजना बनाई। उन पहले के सहायक संस्था के प्रयास ने मदद किया शिष्यता के तरीके को बनाने के लिए, जो अब दुनिया भर में लागू होता है। अब जब गिरजा आगे बढ़ चुकी है, सहायक संस्था सभी वार्ड्स और शाखाओं में, सभी स्टेक और जिलों में अपने लक्ष्य को पूरा कर चुकी है, बढ़ती हुई दुनिया को चुनने में से। प्रतिदिन दुनिया भर की सहायक संस्था की बहनें कई मरणशील चुनौतियों और अनुभवों का सामने करती है। महिलाओं और उनके परिवार आज की जिंदगी में अनजान कठिनाई और मुसीबतों का सामना करती है, दिमागी, शारीरिक और धार्मिक रोग, दुर्घटनाएं और मौत। कुछ बहनों अकेलापन और निराश को भी झेलती हैं, क्योंकि उनके पास अपने परिवार नहीं है और दूसरे परिवार के सदस्य से बने गलत फैसले के कारण। कुछ न लड़ाई या भूख या प्राकृतिक विपत्ति तो अनुभव किया है और कुछ सीख रहे हैं लात पढ़ने से बचने, बिकारी या काम ज्ञान और अनुभव से विषय में। ये सभी मुसीबतें विश्वास के शक्ति को नष्ट कर सकती है और अकेले और परिवारों के शक्ति को तोड़ सकती है। प्रभु का एक महत्व बहनों को संगठित कर चेला बनाना था, ताकि उन्हें सहायक की तरह मदद करे उसमें सभी, जो कुछ महिलाओं की खुशी और भलाई को रुकती है से। सभी वार्ड और शाखा में वहां पर बहनों के साथ सहायक संस्था है, जो प्रकट होने की क्रिया को दूर और प्राप्त कर सकती है और प्रहोत के नेताओं के साथ परिषद करती है एक दूसरे से मजबूत रहने में और उन कार्यों पर काम करेंगे जो उनके अपने घरों संगठनों में लागू होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये मेरी नातिन और पोती सहायक संस्था के द्वारा सीखेगी, उनकी शिष्यता बढ़ती है और दूसरों के कार्य के साथ जोड़ती है वो करने के प्रभु की क्रिया। इस सेवा से वे दुनिया भर में बदलाव कर सकते हैं। अगर इस सारे सेवा और मदद के जैसा होते जो सहायक संस्था ने किया था जब से वो संगठित हुई थी, वो एक प्रभावशाली और वीर गवाही होते। मेरी नातिन और पोतिन को ये भी जान जाए कि सहायक संस्था के बनाव सुरक्षा शारण और बचाव के साथ को भी प्रदान करती है। जब मेरी समय और ज्यादा मुसीबतों से भरी सहायक संस्था की विश्वास में ज्ञान के घरों को बेचेगी, बचाएगी दुनिया के अत्यधिक आवाजों से और विरोधी के लालच और चुनौतियों से प्रभाव से, और सहायक संस्था से सच्ची महिलाएं और भी कई ज्यादा हमारे पिता के बच्चों को आशीर्वाद दे सकती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी नातिन और पोतिन ये समझेगी कि भेंट शिक्षण उनकी शिष्यता का तरीका है और वादों को रखने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। ये तरीका से हमारे उधारकर्ता के देखरेख में हम और ज्यादा मिलते हैं। सहायक संस्था के ही की दिनों में हर वार्ड के भेंट संगठन को एक काम सौंपा गया कि जरूरतों की पता लगाओ और पैसे को इकट्ठा किया गया जरूरतों के लिए। बीते हुए सालों में सहायक संस्था की बहनों और सहायक संस्था के नेताओं ने एक तरीका एक समय पर सीखा और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाया। वो समय था जब बहनों ने ज्यादा समय भेंट को पूरा करने, पात को भराने और सूचना पत्र को देने में ज्यादा ध्यान को लगाया। इन शिक्षण से बहनों को और ज्यादा मदद मिली देखभाल को सीखने में, जिस तरह मोजेस के समय पर लोग लंबी रेखता रखते थे। सहायक संस्था की बहनों ने अपने ऊपर लिखे और बिना लिखे हुए रेखा को रेखा, ताकि वो एक दूसरे को मजबूत करने को सीख सके। आज बहनों और उनकी परिवारों की जिंदगी में इतनी ज्यादा सहायक और बचाव की जरूरत। हमारे स्वर्ग के पिता चाहते हैं कि हम और ऊंची रास्ता को अपनाए और अपने शिष्यता को उसके बच्चों की अच्छाई तरह से देखभाल कर के दिखलाए। मैं मन इस जरूरी याद से नेताओं को सिखलाया गया है कि बहनों और उनके परिवारों के धार्मिक और आत्मिक विषय को पूछा जाए और जो सेवा किए, और भेंट शिक्षा की जिम्मेदारी है कि सच्चाई से हर एक बहनों को जाने और प्यार करे, उसके विश्वास को मजबूत करने में और सेवा में। उद्धारकर्ता के विश्वासी चेलों की तरह हम अपने क्षमता को भर आ रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए जो वो करता है अगर वो यहाँ होते। हम जानते हैं कि उसके लिए हमारी देखभाल है जो वो देखता है, और हम अपनी बहनों की देखभाल की कोशिश करते हैं, नहीं कि उन सच्ची की कार्य को पूरा करने के लिए। सही देखरेख हमारे दान से नापी जाती है, नहीं कि हमारे अंकादे से। हम जानेंगे कि हम अपने भेंट शिक्षण से देखभाल में सफल हुए जब हमारी बहनों ये कहेगी, मेरी भेंट शिक्षण मुझसे धार्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है, और मैं जानती हूँ कि मेरे भेंट शिक्षण मेरे और मेरे परिवार के बारे में बहुत ख्याल रखते हैं, और अगर मेरे पास तकलीफ है मैं जानती हूँ कि मेरी भेंट शिक्षण और उस पर विचार करेंगे बिना उसे बतलाए ही। बहनों और नेताओं जो दूसरे की देखभाल की जरूरत को जानते हैं, होम साथ में सलाह करेंगे प्रकट होने की क्रिया जो ढूंढते और पाने की, ताकि भेंट शिक्षण को भराए और संगठित करे और उसकी देखभाल को आगे बढ़ाए। और भेंट शिक्षण बिशप्स के एक ज्यादा कार्य है प्रभु के बच्चों के देखभाल के लिए। बिशप और सहायक संस्था प्रदान को प्रेरित भेंट शिक्षण की सेवा को करने वालों की जरूरत है उनके कार्य में हाथ बताने के लिए। भेंट शिक्षण के देखभाल से एक सहायक संस्था प्रदान जानेगी कि हर एक बहन अच्छी है वार्ड में, और उनके अच्छे होने का खबर देंगी जब वो बिशप से मिलेंगी। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने हमें ये सिखलाया है कि जब हम विश्वास से कार्य को करते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। जब हम महान से प्रेरणा को अपनी जिम्मेदारियों के कार्य में ढूंढते हैं, हम अचंभा परिणाम को पा सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि मेरी नाती और पोती चमत्कार में भाग लें जब वो भेंट शिक्षण में मदद करें चेला की तरह करने में, कि प्रभु उन्हें जाने जब वो फिर आए। सहायक संस्था के ये और दूसरे शिक्षा अब भी है डॉटर्स इन माय किंगडम, द हिस्ट्री एंड वर्क ऑफ रिलीज सोसाइटी में मेरी नाती और पोती को पढ़ने के लिए। ये किताब सहायक संस्था और इस गिरजा के महिलाओं के इतिहास के लेखा हो बतलाती है। ये दुनिया भर के बहनों को मदद करती है सहायक संस्था के मतलब और चेलों की तरीका और अधिकार के साथ जिंदगी को गुजारने के लिए। ये हमारे पिता के आनंद का महान योगना की गवाही देती है महिलाओं के सुरीपात पर। हमारे विश्वास किया हम करते हैं और किया बचाव करेंगे जो बयान करते हैं। प्रधान अध्यक्षता ने हमें ये भवा दिया है कि इस किताब को सीखो और उसके अनमोल सच्चाई को प्रेरित उदाहरण को जिंदगी में लाने के लिए। जानते हुए कि सहायक संस्था की संगठन पवित्र से बनी थी, प्रधान जोसेफ एस स्मिथ ने सहायक संस्थाओं के बहनों को बताया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दुनिया को आगे चलो, और खास तौर पर दुनिया के महिलाओं के तुम्हें आगे चलना है, उसने के दुनिया के पीछे नहीं चलना। जबकि प्रभु के आने का समय नजदीक आ रही है, मैं आशा करती हूँ कि मेरी नाती और पोती और ज्यादा मजबूत विश्वासी महिला बनेगी जो अपनी जिंदगी में सहायक संस्था की सिद्धांत और तरीके को करेगी। जब सहायक संस्था उनके जिंदगी में उनके लिए एक रास्ता बनती है, वो दूसरों के साथ जोड़कर सेवा करेगी उनके पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए। मेरे पास सच्चे पुनर्स्थापित यीशु मसीह के गिरजे की गवाही है, और मैं चेलों की तरीकों से आभारी हूँ जो पुनर्स्थापित हुआ था जब प्रभु ने नबी जोसेफ स्मिथ को सहायक संस्था को संगठित करने के लिए दिया था। यीशु मसीह के नाम से आमेन। मेरे पति और मैंने हाल ही में नौवू इलिनॉय शहर का दौरा किया। वहाँ पर हम रेड ब्रिक स्टोर के ऊपरी कमरे में बैठे, जहाँ नबी जोसेफ स्मिथ का एक दफ्तर व्यापार था। हमने गैद की बातें गौर से सुनी, जिन्होंने पुनर्स्थापना के कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बताएं जो वहाँ घटी थी। मैंने सहायक संस्था की स्थापना के बारे में सोचा और उन शिक्षा के बारे में जो सहायक संस्था बहनों ने नबी जोसेफ से उस कमरे में पाई थी। वो शिक्षण शायद संस्था के बुनियादी सिद्धांत बने, विश्वास को बढ़ाने, जायन के परिवार को मजबूत करने और जरूरतमंद को ढूंढने और मदद करने के लक्ष्य उसके शुरू से स्थापित किए गए थे। वो हमेशा नबी के आदेश अनुसार चलते हैं। उन शुरुआत की एक सभा में नबी जोसेफ ने पॉल के शब्द दोहराए जो उसने कोरिन्थियंस को लिखा था, दयालु के उनके शक्तिशाली भाषण में। पॉल विश्वास, आशा और दयालुता पर बोलता है, समाप्त करता है कि ये कहकर, मगर इनमें से सबसे महान है दयालुता। वो दयालुता के गुणों के बारे में बताता है। उसने कहा, दयालु धीरजवंत है और कृपालु भी। दयालु कभी दा नहीं करता, वो अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, आसानी से नाराज नहीं होता, बुरा नहीं सोचता, कुकर्म से खुश नहीं होता, मगर सच्चाई में खुश होता है। सभी कुछ सहता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ में आशा रखता है, सब कुछ में धीरज धरता है। दयालुता कभी टालता नहीं। बहनों से बात करते हुए नबी जोसेफ ने कहा, अपने पड़ोसी के बारे में सोचते समय उसके सदगुणों को कम मत समझो। तुम्हें अपने हृदय को फैलने हैं औरों के लिए, अगर तुम यीशु मसीह जैसे बनना है। जब तुम निर्दोषता और सदगुण में बढ़ते हो, जब तुम अच्छाई में बढ़ते हो, अपने हृदय को बढ़ाओ, उस औरों की ओर झुकना। तुम्हें धीरज होना चाहिए और मनुष्य की कमजोरियां और गलतियों को समझते। मनुष्य की आत्मा कितने बहुमूल्य हैं। वो धर्मशास्त्र की घोषणा, दयालुता कभी इतलता नहीं, सहायक संस्था का कहावत बन गया, क्योंकि उसमें शामिल था वो सब शिक्षा और आज्ञा की नबी जोसेफ स्मिथ ने सहायक संस्था बहनों को आदेश दिया था, गरीबों को सहायता देने और आत्माओं को बचाना। ये बुनियादी सिद्धांत सहायक संस्था की बहनों द्वारा दुनिया भर में अपनाए गए थे, क्योंकि असली है प्रकृति है संस्था कार्य की। दयालुता क्या है? हम कैसे दयालुता हासिल कर सकते हैं? नबी मोर्मन दयालुता को मसीह का सच्चाई प्रेम बतलाता है, जबकि पॉल सिखलाता है कि दयालुता संपूर्णता का गाठ है, और नीफाई हमें याद दिलाता है कि प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी कि सारे मनुष्य के पास दयालुता होना चाहिए, जो दयालुता प्रेम है। पॉल द्वारा दिए गए दयालुता के अर्थ को फिर से देखते हुए हम सीखते हैं कि दयालुता एक समय का कार्य नहीं या जो हम बातें हैं, मगर जीने का एक तरीका, हृदय का एक स्थिति, दया के एहसास जिसे प्रेम भरे क्रिया उत्पन्न होती है। मोर्मन ये भी सिखलाता है कि दयालुता प्रभु के सच्चे चेलों को दिया जाता है और कि दयालुता निर्मल करता है। और आगे हम सीखते हैं कि दयालुता एक दिव्य उपहार है जिसे हम ढूंढना और प्रार्थना द्वारा पाना है। हमें अपने हृदय में दयालुता रखना चाहिए ताकि हम दिव्य राज्य को पा सके। इस समझ के साथ कि प्रभु ने हमें अपने आप को दयालुता के बंधन में बांधने का आदेश दिया है, हमें पूछना चाहिए कौन से गुण दयालुता विकसित करता है। हमारे पास पहले वो इच्छा होनी चाहिए दयालुता बढ़ाने की और मसीह जैसे बनने की। अगले कदम है प्रार्थना करना। मोर्मन कहता है हमें पिता से प्रार्थना करना चाहिए अपने हृदय की संपूर्ण शक्ति से, ताकि हम उसकी प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ये ईश्वरीय प्रेम है दयालुता, और जब हम इसे परिपूर्ण हो जाते हैं, हम उनके जैसे बन जाएंगे। दैनिक धर्मशास्त्र पढ़ने हमारे मन को उदारकर्ता के करीब लाएगा और हम उनके जैसे बन जाएंगे। मेरे दफ्तर में मैंने एक चित्रकला टांगा है मिनर्वा टाइकर द्वारा, जिसका शीर्षक है रेस्क्यू ऑफ द लॉस्ट लैम, जो गॉस्पल लाइब्रेरी में है इंटरनेट पर। इसमें उदारकर्ता अपने बैरों के बीच खड़ा है और कोमलता से एक मैम को अपने गोद में लिए है। इसमें उनके निवेदन को याद करता है, मेरे बैरों को रखवाली कर। उदारकर्ता दयालु बनने का सही उदाहरण है। उनके मरणशील प्रचार के दौरान उसने भूखों, पापी, दुखी और बीमार के लिए दया दिखाई। उसने गरीब और धनी को सहायता दी, महिलाओं, बच्चों और पुरुषों, अपने परिवार, दोस्तों और अजनबियों को भी। उसने अपने दोष लगाने वालों को माफ किया और वो सभी मनुष्यों के लिए कष्ट सहा और मर गए। अपने पूरे जीवन में नबी जोसेफ स्मिथ ने दयालुता को दिखलाया जब उसने भाइयों से प्रेम किया और औरों के आदर किया। वो दूसरों के प्रति अपने कृपा, प्रेम, दया और परवाह के लिए जाना जाता था। आज हम धन्य हैं कि हमारे नबी के पास दयालुता है। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन हमारे और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उनके पास दयालुता है। वो कृपालु, दयालु और बड़े दिल वाला है, एक सच्चा प्रचारक प्रभु यीशु मसीह का। प्रधान मॉन्सन सिखलाता है, दयालुता का मतलब है किसी के धैर्य रखना जिसने हमें नीचा दिखाया है। हम आसानी से नाराज नहीं होते, हम कमजोरियों और गलती को मान लेते हैं। हम लोगों को जैसे वो हैं वैसे ही अपनाते हैं। इसका मतलब है हम शारीरिक रूप से आगे देखें जो समय के साथ ढलता नहीं, हम लोगों को परखते नहीं। जब हमारे पास दयालुता होती है, हम सेवा करने और सहायता करने चाहते हैं। जब असुविधाजनक हो जो और कोई पहचान या बदले में कुछ नहीं चाहते, हम सहायता देने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, वो हमारे स्वभाव में हो जाती है। जब हम कृपा, देखभाल, परोपकार, धैर्य, अपनापन, माफी, संगत और निस्वार्थ चुनते हैं, हम जान पाते हैं कि हम दयालुता में हैं। सहायक संस्था अगिनत तरीके प्रदान करता है औरों की सेवा करने के। एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दयालुता का शिक्षण भेंट। सही शिक्षण भेंट द्वारा हमें कई मौके मिलते हैं प्रेम प्रचार और सेवा के। दयालुता दिखलाने या प्रेम हमारे आत्मा को निर्मल और साफ करता है, हमें उदारकर्ता जैसा बनने में मदद करता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ दयालुता की इतने क्रिया को हर दिन शिक्षण भेंट करते द्वारा दुनिया भर में करते देखकर, जो हर बहन और उसके परिवार की जरूरत को निस्वार्थ रूप से पूरे करता है। इन विश्वासी शिक्षण भेंट करता के लिए मैं कहती हूँ, इन छोटे क्रिया से तुम उधारकर्ता जैसे कर रही हो। उनके हाथ में औजार हो सहायता, चिंता बढ़ाने, सहानुभूति सुने, प्रोत्साहित करने, पोषण, शिक्षा और शक्ति का इन बहनों के लिए। मुझे ऐसी प्रचार के एक उदाहरण बांटने दे। रोसा कमजोर करने वाली डायबिटीज और अन्य पीढ़ी से तड़प रही थी। उसने कुछ वर्ष पहले ही गिरजे को अपनाया। वो अकेली माता है कि युवा उम्र के बेटे एक साथ। उसे अक्सर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसके कृपालु बहन करने वाले शिक्षक उसे सिर्फ अस्पताल नहीं ले जाते, पर वहां उसे देखने और सहानुभूति देने भी जाते और उसके बेटे का ख्याल रखते। उसके बहन वाले शिक्षक उसके दोस्त और परिवार की तरह सेवा करते हैं। कैथी ने एक बहन के कुछ बहन तो बात जाना कि ये बहनों पढ़ना नहीं जानती पर सीखना चाहती थी। कैथी ने मदद किया जबकि वो जानती थी इसके लिए समय, धैर्य और लगातार कोशिश लगा। एमिली एक जवान पत्नी है जो सच्चाई ढूंढ रही थी। उसका पिता माइकल धार्मिक चीजों में कम दिलचस्पी दिखाता था। जब एमिली बीमार पड़ी और अपना कुछ समय अस्पताल में बिताए, कैली एक सहायक संस्था बहन जो उसकी पड़ोसी भी थी ने परिवार को भोजन दिया, उसके छोटे बच्चे का ख्याल रखा, घर साफ किया और एमिली को एक पुरोहित आशीर्वाद दिलवाया। दयालुता का ये उदाहरण से माइकल को प्रसन्नता मिली। उसने गिरजा सभाओं में भाग लेने के निर्णय किया और प्रचारों के से मिलने का भी। एमिली और माइकल ने हाल ही में बैप्टिज्म लिया। दयालुता कभी नहीं टलता। दयालुता कृपालु है, अपनी भलाई नहीं चाहता, सभी कुछ सहता है, सब कुछ में धीरज धरता है। प्रधान हेनरी बी आयर ने कहा, सहायक संस्था के इतिहास में ऐसे कई विशिष्ट निर्वस्त्री सेवा का कहानी है। ये संस्था उन महिलाओं से बनी है जिनकी दयालुता की भावना प्रभु के सच्चे गिरजे के योग्य रहने और वादों को निभाने से उत्पन्न होती है। उनके दयालुता के एहसास इनसे आते हैं, उनके प्रायश्चित द्वारा उनके दयालुत्व के कार्य उनके उदाहरण से मिलती है और उनकी दया के अग्नितित उपहार की प्रति कृतज्ञता से आती है और पवित्र आत्मा द्वारा जो वो बेचता है उनके सेवकों के साथ देने के लिए दया के कार्य में। इस कारण उन्होंने असाधारण कार्य किए हैं और कर पाते हैं औरों के लिए और आनंद पाते हैं भले ही उनके खुद की जरूरतें बहुत हैं। सेवा प्रदान करना और दयालुता दिखाना औरों को हमें मदद करता है अपने खुद के कठिनाइयों पर काबू पाना और वो कम चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। मैं अब नबी जोसेफ के शिक्षा पर गौर करती हूँ जो उसने पुनर्स्थापना के दिनों में बहनों को दिया था। दयालुता और भलाई के कार्य की प्रेरणा देकर उसने कहा, अगर तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगी कितना महान और विशाल होगा तुम्हारा पुरस्कार स्वर्ग के राज्य में। अगर तुम अपने सौभाग्य को अपनाओगी स्वर्ग दूत तुम्हारे सहायक बनने से इनकार नहीं करेंगी। जैसे नौवू के शुरुआत में हुआ था जब बहनों ढूंढने और मदद करने जाती थी जरूरतमंद को, वैसा अब आज भी है। राज्य में बहने आत्मिक शक्ति दया की सेवा और श्रद्धा की मजबूत समर्थक है। लगनसार बहन शिक्षण जाकर एक दूसरे की देखभाल करती है, वो उदारकर्ता के उदाहरण का पालन करती और उनके जैसा करती है। सहायक संस्था की सभी महिलाओं में प्रेम की भावना आ सकती है ये जानकर कि उनके छोटे दयालुता के कार्य में एक चाहगाय की शक्ति है उनके और औरों के लिए। वो निश्चय से जान जाते हैं कि दयालुता मसीह का संपूर्ण प्रेम है और कभी तलता नहीं। जब तुम सहायक संस्था का इतिहास पढ़ोगे तुम प्रेरणा पाओगे ये ढूंढने में के लिए कि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत एक सामान्य विषय है पूरे किताब में। मैं समाप्त करती हूँ एक निमंत्रण से गिरजे के सभी महिलाओं के लिए कि वो दयालुता के उपहार को पाने की विनती करें जो मसीह का संपूर्ण प्रेम है। अपने सभी साधनों को अच्छाई करने में इस्तेमाल कर, अपने आसपास के लोगों में संतुष्टि और मुक्ति लाकर अपने परिवार को भी। प्रभु तुम्हारे कोशिशों को सफलता से आशीर्वाद देगा। पिता और पुत्र के महान प्रेम का ज्ञान जो है हमारे पास और हमारे विश्वास और कृतज्ञता प्रेषित के लिए हमें सभी की और दयालुता विकसित करने और आजमाने की प्रेरणा दे। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपने हृदय को उठाओ और खुशी मनाओ और विश्वास के साथ उन वादों से तुम जुड़े रहो जो तुमने बनाए। मैं हमेशा खुशी महसूस करती हूँ जब ये धर्मशास्त्र पढ़ती हूँ। मेरा हृदय खुश होता है जब मैं उन वादों और कई आशीर्वादों के बारे में सोचूं जो मेरे जीवन का भाग रह चुके जब मैंने कोशिश किया स्वर्ग के पिता से किए वादों से जुड़ा रहने का। क्योंकि हमारे दोनों माता पिता मर चुके हैं इस वर्ष में उनके घर को खाली करने पड़ा ताकि वो हम बेच सके। बीते कुछ महीनों के दौरान मेरे भाई बहन और मैंने सफाई की और मेरे माता पिता के घर के चीजों को आयोजित किया। हमने परिवार के इतिहास और जरूरी कागजात पाए। बहुत अच्छा, अपने माता पिता और दादाओं ने निजी इतिहास और कुलपति आशीर्वाद के कागजों को पढ़ने से मुझे मेरे बनाए गए वादों की याद आए जो मैंने निभाए हैं। मेरी नानी एलन हैंक्स राइमर एक जवान माँ थी 1911 में जब उसने अपना कुलपति आशीर्वाद प्राप्त किया था। जब मैंने उसकी आशीर्वाद को पढ़ा ये लिखावट मुझे बह गई और मेरी दिमाग में रह गई। तुम्हें दुनिया की रचने से पहले चुना गया था और एक चुने हुए आत्मे को इन दिनों में लाया गया। आपकी गवाही बढ़ेगी और आपकी गवाही दे सकोगी। विनाश करने वाले ने आपका विनाश करने की सोची है मगर अगर आप अपने परमेश्वर के साथ विश्वास में जुड़े रहोगे उसके विनाश करने वाला पास शक्ति नहीं रहेगी आपको हानि पहुंचाने के लिए। आप अपने विश्वास से महान शक्ति पाओगे और विनाशक आपके सामने से भाग खड़ा होगा आपकी धार्मिकता के कारण। जब डर और मुसीबत की घड़ी आपके सामने आएगी और आप अकेले होकर प्रार्थना करोगे आपके हृदय सहानुभूति पाएगी और रुकावट हट जाएगी। میری نانی کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے وعدوں کو نبھائے گی اور پرمیشور کے قریب رہے گی, شیطان کا اس کے اوپر کوئی شکتی نہیں ہوگی. وہ اپنے مصیبتوں میں سہانوبھوتی اور سہایتا پائے گی. یہ وعدے ان کے جیون میں پوری ہوئی تھی. آج میں وشواس کے ساتھ وعدوں سے جڑے رہنے کی آوشیکتا اور وعدوں سے کو نبھانا سے جو خوشی اور سہایتا ملتی ہے, کچھ ادھارن جو میں استعمال کروں گی. میری راجہ کی بیٹیاں, سہایک سنستھا کی اتہاس اور کام نامک کتاب سے. یہ کتاب ان مہیلاؤں کے ادھارن سے بھری ہے جنہوں نے وعدوں کو نبھائے وشواس کے ساتھ وعدوں سے جڑنے رہنے کے لیے. دھرم شکتا کا شبدوش بتلاتا ہے کہ ایک وعدہ ایک سمجھوتا ہے منشیہ اور پرمیشور کے بیچ. پرمیشور اپنا اکشا انوسار شرط رکھتا ہے جو منشیہ اپناتا ہے. سوسماچار کو اس طرح سنگتھت کیا گیا ہے کہ سدھان کو اپناتے سمے اپنانے والے کو اس گہری بندھن اور ذمہ دار جو نبھانے کا وعدہ دینا ہوتا ہے. اس واقعہ وشواس کے ساتھ وعدوں سے جڑے رہنا میں جڑے رہنا کا ارتھ ہے کس کر لپٹ جانا کسی چیز سے. دھرم شاستر میں ہم پروش اور مہیلاؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں جنہوں نے پرویشور سے وعدے کیے ہیں. پرویشور نے ادیش دیا ہے جیسے ان وعدوں کا سمان کرے, اور پھر جب ان وعدوں کو نبھا لیا جاتا ہے وعدے کی آشیواد ملتے ہیں. ادھارن کے لیے بیپٹزم کے سدھانت دوارا ہم اپنے سورگ کے پتا سے وعدہ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بیپٹزم کے لیے تیار کرتے ہیں پربھو یسو مسیح میں وشواس رکھنے سے, پاپوں سے کھما مانگنے سے, اور مسیح کے نام اپنے اوپر لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ پرمیشور کے آگیاؤں کو پالن کریں گے اور ادھارکرتا کو ہمیشہ یاد کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے بوجھ کو سہن میں سہایتا دینے کی جس سے وہ ہلکا ہو جائے. ہم دکھلاتے ہیں کہ ہم دکھی لوگوں کے ساتھ دکھی ہونے کی اچھا رکھتے ہیں. پوتر مندروں میں انیا پوتر سدھانتوں کو حاصل کیا جاتا ہے اور انیہ وعدوں کیے جاتے ہیں. پنستھاپنا کے شروعات کے دنوں میں نبی جوزف اسمتھ اتسک تھے کہ سنت مندر کے وعدے کیے گئے آشیواد پائے. پربھو نے کہا کہ مندر ان کے نام سے بننا چاہیے تاکہ وہ اپنے سدھانتوں کو اس کے اندر اپنے لوگوں کو بتلائے. سائد سنستھا کو آیوجت کرنے کے پربھو کا مقصد تھا اپنے پتریوں کو پروہتی کے بڑے آشیوادوں کے لیے تیار کرنے جو مندر کے سدھانتوں اور وعدوں میں پائے جاتے ہیں. وہ بہنیں جو نوو میں مندر کے نرمان کو ختم ہونے کی اتسکتا سے انتظار کر رہے تھے جانتی تھی کہ جیسے نبی جوزف اسمتھ نے مرسی فیلڈنگ تھامسن سے وعدہ کیا تھا, انڈاؤمنٹ انہیں اندھیرے سے نکال کر بڑیا جوتی میں لائے گی. 5,000 سے زیادہ سنت نوو ٹیمپل آئے اس کے سمپرن کے بعد تاکہ وہ انڈاؤمنٹ اور جڑنے سے سدھانت کو حاصل کر سکے اپنی یاترا پر نکل سے پہلے سالٹ لیک ویلی جانے کے لیے. پردھان بریگم ینگ اور کئی گرجا نیتا اور مندر کاریکرتاؤں نے اپنا سمے دن اور رات مندر سیوا میں بتایا تاکہ یہ مہتوپورن کام سنت کر سکے. ہمارے وعدے اچھے یا کٹھن سمے میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں. پردھان بوائے کے پیکر یاد دلاتا ہے کہ ہم وعدے کے لوگ ہیں. ہم وعدے کرتے ہیں اپنے سمے اور پیسے اور گن کی سمپتی کو دینے کا. ہم جو ہے اور جو ہماری ہے پرمیشور کے راجہ کی اچھائی کے لیے جو دھرتی پر ہے. سرل شبدوں میں ہم اچھائی کرنے کے وعدہ کرتے ہیں. ہم وعدے کے لوگ ہیں اور مندر ہمارے وعدوں کا آدھار ہے. وہ وعدہ کا نیو ہے. دھرم شاستر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وعدہ یوگی کی ہوگا کہ ہم پربھو کے سدھانتوں پر چلیں. ہم مہان آشیواد حاصل کرتے ہیں جب ہم وشواس سے وعدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. خوشحالی اور سرکشا وعدوں کو نبھانے سے ملتا ہے. مورمن دھرم شاستر میں ہم راجہ بینجمن کا اپدیش پڑھتے. اس نے لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں سکھایا کہ وہ دھرتی پر آئے گا اور سبھی طرح کے پیری کو جہلائے گا. اس نے لوگوں کو سکھلا کہ مسیح سارے منشو کے پاپوں کو پراشچتت کرے گا اور کہ ان کے نام سے ہی منشیا مکتی پا سکیں گے. ان اچھی شکشا کو سننے کے بعد لوگ ونمر ہو گئے اور اپنے پورے ہدے سے چاہتے تھے کہ پاپ سے مکتی پانے اور سوچ ہونا. انہوں نے پشچاتاپ کیا اور یسوع مسیح میں اپنے وشواس کی گواہی دی. انہوں نے پرمیشور سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے آگیاؤں کو پالن کریں گے. پربھو کی آتما ان پر آئی اور انہیں خوشحالی ملی پاپوں سے کھما اور من کی شانتی پانے کے بعد ان کے یسوع مسیح میں ادھک وشواس کے کارن. खुशहाली का एक और उदाहरण मिलता है परमेश्वर के आज्ञाओं का विश्वास से पालन करने से और उनके सुसमाचार को औरों के साथ एमन की तरह बांटते से। एमन और उनके भाइयों ने बहुत कुछ किया है हजारों लोगों को मसीह तक लाने के लिए। ये कुछ शब्द एमन ने इस्तेमाल किए थे अपने एहसास को जहरीर करने के लिए जब इतने सारे लोगों ने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर के साथ वादे किए। हमारे पास आनंद मानने के कितने महान कारण हैं। मेरा आनंद परिपूर्ण है, मेरा हृदय आनंद से बढ़ उठा है और मैं अपने परमेश्वर में आनंद मांगूंगा। मैं जो महसूस करता हूँ उसका छोटा से छोटा भाग भी नहीं बतला सकता। जगत में मनुष्य के पास हमारे जैसा आनंद मानने के इतने महान कारण नहीं है। पवित्र वादों को बनाना और निभाना हमें पवित्र आत्मा को साथ रखने का मौका देता है। दूसरे महायुद्ध में दुनिया भर के कई लोगों को बहुत पीड़ा हुई। जर्मनी के संतों ने कई मुसीबतें झेली। स्टुटगार्ट जर्मनी की एक विश्वासी सहायक संस्था प्रधान थी बहन मैरिया स्पाइडल। अपनी मुसीबतों पर बोलते हुए उसने कहा, प्रभु में हमारा भरोसा और गिरजे की हमारे गवाही की हमारे साहस का स्रोत है। आनंद के साथ हम जायन के गीत गाए और प्रभु में अपना भरोसा रखे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। एक बार फिर जब सदस्यों ने अपने वादे निभाए उन्होंने घोर चुनौतियों में भी आनंद महसूस किया। सेरा रिच नोवो में रहने वाली एक धार्मिक महिला थी जिसे मंदिर में कार्य करने के लिए चुना गया था संतों को शहर से जाने से पहले। ये है उसके शब्द मंदिर वादों के आशीर्वादों के बारे में। प्रभु के घर में हमें कई आशीर्वाद पाए थे जिसे हमें आनंद और सहानुभूति मिली है हमारे दुखों से के बीच और हमें मदद किया कि हम परमेश्वर में विश्वास रखें। ये जानते हो कि वो हमें मार्ग दिखाएगा और देखभाल करेगा आने वाले अनजाने सफर में। जल्द ही संतों ने क्रिटनन मंदिर का निर्माण खत्म किया और कई लोगों ने संपर्ण में भाग लिया। संपर्ण के बाद प्रभु ने मंदिर को अपना लिया। प्रभु ने उन्हें बहुत आनंद मनाने को कहा और उन आशीर्वादों के कारण जो उनके लोगों को मिलने वाले थे। जबकि और ज्यादा पवित्र मंदिरों का निर्माण धरती भर में हो रहा है, मैंने सदस्यों के जीवन में आने वाले आशीर्वादों को देखा है। सन 2008 में मैंने यूक्रेन के एक दंपति के चेहरे पर आनंद देखा जब उन्होंने मुझे फ्रीबर्ग जर्मनी जाने के बारे में बताया अपने मंदिर सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए। मंदिर का सफर एक 27 घंटों का बस का सफर था एक और की समर्पित सदस्यों के लिए और वो अक्सर नहीं जा पाते थे। वो खुश थे कि कीव यूक्रेन मंदिर जल्द बनने वाला है और वो वहां अक्सर जा पाएंगे। वो मंदिर अब खुल चुका है और हजारों वहां आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपनी नानी की निजी इतिहास पढ़ने से मैंने वादों में उसके महान आनंद के बारे में सीखा। वो मंदिर जाना पसंद करती थी और हजारों मृत लोगों के लिए सिद्धांतों को पूरा करना वो उसके जीवन का लक्ष्य था। उसने मैंटा यूटा मंदिर में एक कार्यकर्ता के रूप में 20 वर्षों तक सेवा प्रदान किया। उसने लिखा कि उसने कई चमत्कारिक चंगाई को अनुभव किया है अपने बच्चों को पालते समय और मंदिर में औरों के लिए सेवा के कार्य करने से। हम उनके नाती अगर कुछ नानी रायमा के बारे में जानते हैं तो वो है कि वो एक धार्मिक महिला थी जिसने अपने वादे निभाए और चाहा कि हम भी वैसा करें। जब लोग हमारे संपत्तियों में ढूंढते हैं हमारे मौत के बाद, क्या वो पाएंगे कि हम अपने वादे निभाए हैं? हमारे प्रिय नबी प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने हमें पिछले महासम्मेलन में बतलाया, जब तुम और मैं परमेश्वर के पवित्र मंदिरों में जाए, जब हम वहां पर किए वादों को याद करें, हम हर मुसीबत को झेलने और हर बेकावे से विजय पाने की काबिल रहेंगे। इस पवित्र जगह पर हम शांति पाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी और हम तैयार रहेंगे। एक बार फिर प्रभु हमसे कहता है, अपने हृदय को उठाओ और खुशी मना और विश्वास के साथ उन वादों से तुम जुड़े रहो जो तुमने बनाया है। वादों को निभाना सच्चा आनंद और खुशहाली है। ये सहानुभूति और शांति है। ये जगत की बुराइयों से सुरक्षा है। अपने वादों को निभाना हमें मुसीबत से मदद करेगा। मैं गवाही देती हूँ कि जब हम मसीह में विश्वास करेंगे और अपने वादों से जुड़े रहेंगे, हम वो खुशहाली पाएंगे जो पवित्र धर्मशास्त्र में बताया गया और हमारे अंतिम दिन नबियों द्वारा वादा किया गया है। प्रिय बहनों, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस महान आनंद को अपने जीवन में अनुभव करोगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
गायक मंडली और अन्य संगीत प्रचारक को भाग देने के लिए धन्यवाद देते हैं और स्वीकार करते हैं उन सभी को जिन्होंने इस सभी की तैयारी में मदद किया है। हम अब सम्मानित होंगे प्रधान डीटर एफ उकचौर्फ प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के भाषण से। उनके भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी नाउ लेट अस रिजॉइस। बहन सैंड्रा राजर्स सहायक संस्था महाबोर्ड की सदस्य से इसके बाद प्रार्थना बोलेगी।
मेरे प्यारे बहनों, कितना आनंद आता है आज आप सबके साथ होकर। मैं हमेशा इस वार्षिक महा सहायक संस्था सभी एक की प्रतीक्षा करता हूं और यहां दिए गए संदेशों की मेरे लिए ये एक बहुमूल्य सम्मान है कि मैं चंद विचार पेश कर जो गिरजाघर के बहनों के लिए कुछ देर पहले मैं एक सुंदर बगीचे से गुजर रहा था अपने पत्नी और बेटी के साथ। मैं परमेश्वर की रचनाओं की महानता और सुंदरता पर आश्चर्य कर रहा था और फिर मैंने देखा सभी सुंदर फूलों में से सबसे छोटा फूल। मैं इस फूल का नाम जानता था क्योंकि बचपन से मेरा इस फूल से एक नाजुक लगाव रहा है। इसका नाम मुझे फूल का नाम था मुझे भूलना नहीं। मुझे ठीक से नहीं पता क्यों यह छोटा फूल इस वर्षों में मेरे लिए इतना मतलब का रहा है। हम उसे आसानी से नहीं देख पाते। वो बड़े और ज्यादा रंगीले फूलों के बीच छिप जाता था, फिर भी वो उतना ही सुंदर है अपने गहरे रंग के साथ जो नीले आसमान जैसा है। शायद एक और कारण मैं उसे इतना पसंद करता हूँ, और वहाँ उसका नाम एक निवेदन है। जर्मन लोगों के एक किस्सा है कि जब परमेश्वर ने सभी पौधाओं को नाम देना समाप्त किया, एक छूट गया था। एक छोटी आवाज ने कहा, मुझे बोलना नहीं ए प्रभु, और परमेश्वर ने जवाब दिया कि वही उसका नाम होगा। आज रात मैं इस छोटे फूल के एक लक्षण की तरह इस्तेमाल करूंगा, इस छोटे मुझे भूलना नहीं फूल के पांच पंखुड़े मुझे पांच चीजें नहीं भूलने को कहती है। पहले, अपने आप के साथ धैर्य से पेश आने को नहीं भूलना। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं और आशा करता हूं कि तुम सही तरीके से समझोगे। परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि तुम और मैं संपूर्ण नहीं है। मुझे यह कहने दे, परमेश्वर यह भी जानता है कि जिन्हें तुम जानते हो कोई संपूर्ण है हो नहीं है, और फिर भी हम इतना सारा समय और शक्ति गवाते हैं अपने आप की औरों से तुलना करने से। ज्यादातर अपने कमजोरियों को उनके विशेषता से तोलते हैं, जिसे हम अपने लिए बड़े उम्मीद रखते हैं जो हासिल करना असंभव है। इसका परिणाम हम कभी अपने अच्छे कोशिश का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वो किसी और कोशिश के काम लगता है। सभी के पास विशेषता और कमजोरियां हैं। यह बहुत बढ़िया है कि तुम्हारे पास विशेषता है। यह तुम्हारे मरणशील अनुभव का हिस्सा है कि तुम्हारे पास कमजोरी है। परमेश्वर को आखिरी में हमारा मदद करेगा हमारे कमजोरियों को विशेषताओं में बदलकर, मगर वो जानता है कि यह लक्ष्य लंबे समय का है। वो चाहता है कि हम उनकी तरह संपूर्ण बने, और अगर हम चेला बने तो मार्ग पर तक रहेंगे कि ठीक है अगर तुम वहां नहीं पहुंचे। काम कीजिए मगर खुद को डांट देना छोड़ दे। प्यारे बहनों, आप में से कई लोग दूसरों के कमजोरियों के साथ बहुत ज्यादा दयालु और दया रखते हैं। कृपया याद रखिए कि खुद के साथ भी दयालु और धैर्य रखिए। तब तक अपने घर, पारिवारिक रिश्तों, पढ़ाई और जीने के साधन, अपने गिरजा में भाग लेना और निजी सुधार के छोटे सफलताओं के लिए आनंदित रहे। मुझे नहीं भूलना की तरह ये सफलताएं तुम्हें छोटी लगेगी और अन्य लोग उन्हें नहीं देखेंगे, मगर परमेश्वर उन्हें देखता है और उनके लिए वो छोटी नहीं। अगर तुम छोटे सोचते हो कि सफलता हो सबसे सुंदर गुलाब या आकर्षक ऑर्चिड है, तुम जीवन के कुछ मीठे फल शायद पीछे छोड़ दोगे। उदाहरण के तौर पर, यह जाना कि तुम्हारा पारिवारिक घरेलू सभा और हफ्ते बिल्कुल सही, वो चाहे ऐसा करना तुम्हें और औरों को अच्छा नहीं लगता, सबसे बेहतर चुनाव नहीं हो सकता। इसके अलावा अपने आप से पूछिए, हम एक परिवार के रूप में क्या कर सकते हैं जो अच्छा लगे और धार्मिक हो और हमें एकता में रखे। इस तरह के पारिवारिक गहरोली सभा, चाहे वो साधारण हो, अवसर और आचरण में शायद लंबे समय के सही परिणाम देंगे। हमारी यात्रा संपूर्णता की ओर लंबी है, मगर हम आश्चर्य और खुशी पा सकते हैं अपने सफर के छोटे से कदम में भी। दूसरा, नहीं भूलना के अच्छे बलिदान और एक मूर्ख बलिदान में अंतर। एक लायक बलिदान है जब हम कुछ अच्छा बलिदान करते हैं कुछ और ज्यादा मूल्य के वास्तु के लिए। थोड़ी सी नींद को बलिदान करना एक बच्चे के लिए जो डरावना सपना देख लिया, वो एक अच्छा बलिदान है। रात बाहर जगना अपनी खुद के सेहत को खराब करके एक बेटी के सबसे सुंदर कपड़ों के साथ पहनने वाली गहने बनाने के लिए शायद एक अच्छा बलिदान नहीं होगा। अपना कुछ समय धर्मशास्त्र अध्ययन के पथ की तैयारी में बिताना एक अच्छा बलिदान है। कई घंटे हंडी उठाने वाले कपड़े में पाथ कर शिक्षक सेना हर एक कक्षा सदस्य के लिए अच्छा बलिदान नहीं है। हर व्यक्ति और स्थिति अलग है और एक अच्छा बलिदान एक स्थिति में शायद दूसरे स्थिति के लिए मूर्ख बलिदान होगा। हम अपने खुद की स्थिति में कैसे अंतर बता सकते हैं? हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं अपना समय और शक्ति उन चीजों में बिताता हूँ जो सबसे जरूरी है? यहाँ कितने अच्छाई चीजें हैं करने के लिए, मगर हम सब नहीं कर सकते। एक आनंद अनुदृश्य में हमारे स्वर्ग के पिता सबसे परेशान होते हैं जब हम कुछ अच्छा बलिदान करते हैं कुछ बहुत अच्छे के लिए। कभी कभी इसका मतलब हो सकता है छोटे पर सुंदर मुझे भूलना नहीं फूल का पोषण करना बजाय के बड़े बगीचे में। तीसरा, अभी खुश रहना नहीं भूलना। उस प्रिय बच्चों की कहानी में चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री और गुप्त मिठाई बनाने वाला विली वोंका अपने 5 मिठाइयों में सोने का पर्ची छिपाता है और कहता है जो भी एक पर्ची पाएगा वो उसके कारखाना का द्वारा जीतेगा और साथ में पूरे जीवन के लिए चॉकलेट। हर एक सोने के पर्ची पर यह संदेश है, मुबारक हो आपको इस सोने के पर्ची का खुशकिस्मत पाने वाले। जबरदस्त चीजें तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए अनोखी चीजें हैं, गुप्त और आश्चर्यजनक चीजें खुश करेगी, चकित करेगी और उलझगित तुम्हें। तुम्हारे असाधारण सपनों में भी तुम्हें ऐसी चीजों की कल्पना नहीं होगी। इंतजार करो और देखो। बच्चों के प्रथम श्रेणी के कहानी में दुनिया भर के लोग सोने की पर्ची ढूंढना चाहते हैं। कुछ सोचते हैं कि उनके भविष्य की पूरी खुशी सिर्फ उस सोने की पर्ची को। आज कितने लोग अपने लिए सोने के पर्ची कर इंतजार करते हैं, वो पर्ची जो हो विश्वास करते हैं उनके हजारों आरज़ू के खुशी की चाबी देगा। कुछ लोग के लिए सोने की पर्ची शायद एक संपूर्ण शादी होगा, अन्य लोगों के लिए एक सुंदर घर जो पत्रिका के कवर पर छपता है, या शायद दबाव या चिंता से छुटकारा। अच्छी आरज़ू रखना कुछ गलत नहीं। हम उन चीजों की आशा करते और ढूंढते जो शब्द प्यारे या अच्छाई या बधाई लायक हो। मुसीबत आते हैं जब हम अपनी खुशी को टालकर किसी भविष्य में होने वाले घटना को इंतजार करने लगते हैं हमारा सोने की पर्ची पाने के लिए। एक महिला किसी और चीज के ज्यादा चाहती थी। एक धार्मिक पवित्र रखने वाले मंदिर में शादी करना और एक माता और एक पत्नी बनना, उसे यह सपना अपनी पूरी जिंदगी देखी थी। और हाँ, वो एक बहुत अच्छी माता और प्यारी पत्नी बनती। उसका घर प्यार दया से भर जाता, वहाँ कोई कठोर शब्द नहीं कहा जाता, भोजन कभी जलता नहीं और उसके बच्चे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के जगह अपने शाम और छुट्टियां माता और पिता के साथ बिताना पसंद करते। ये था उसका सोने के पर्ची। वो ही एक चीज था जिस पर वो सोचती थी कि उसका पर जीवन का ठिका था, मगर वो कभी नहीं हुआ। और जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए वो और भी अकेली होती गई, कठोर उसे और गुस्से वाली भी। वो समझ नहीं पा रही थी क्यों परमेश्वर उसके धार्मिक इच्छा को पूरी नहीं करना चाहता था। वो एक प्राथमिक शिक्षा की नकौड़ी नौकरी करती थी और दिन भर बच्चों के बीच होना उसे याद दिलाता था कि खुशी सोने के पर्ची भी तक नहीं मिली है। लोग उसके करीब रहना नहीं पसंद करते थे और उसे चुपते रहते थे जब मौके मिले, और अपना गुस्सा पाठशाला में बच्चों पर भी उतार देती। इस कहानी का दुख है कि यह प्यारे महिला सोने की पर्ची के बारे में अपने पूरी निराशा में देख ना पाई वो आशीर्वाद जो उसके पास था। उसके पास घर में बच्चे नहीं थे, मगर पाठशाला में हो उसके सभी और थे। उसके पास परिवार का आशीर्वाद नहीं था, मगर प्रभु ने उसे वो मौका दिया था जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। एक शिक्षा के रूप में कई सौ बच्चों के जीवन में अच्छाई का प्रभाव बनाना। जब पद यहाँ सीखते हैं जो है, अगर हम अपने दिन गुलाब का इंतजार करने में बिताए, हम अपने आसपास के छोटे मुझे भूला नहीं फूलों के सुंदरता और आश्चर्य को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हम अपने आशाओं को छोड़ दें और या अपने लक्ष्य को मिटा दें। कभी अपने अंदर के सर्वोत्तम चीजें को पाना नहीं छोड़ें। कभी अपने हृदय को धार्मिक इच्छाओं का आशा मत छोड़ें, मगर हर दिन एक साधारण चनों को उस सरलता और सुंदरता को देखना और महसूस करना ना छोड़ दे जो एक पौष्टिक ठीक से जिया जीवन बनाता है। मैं जिन कुशल लोगों का जानता हूँ, उन्होंने अपना सोने की पर्ची को नहीं पाया। वो लोग हैं जिन्होंने अपने योग्य लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन एक चनों में सुंदरता और खजाना ढूंढ रहा। वो ही है जो सच में खुश है। चौथा, भूले मत सुसमाचार का क्यों। कभी कभी हमारे जीवन के भाग दौड़ में हम बिना जाने यीशु मसीह के सुसमाचार का हम भाग को नजरअंदाज करते, जैसे कोई एक सुंदर कोमल मुझे भूलना नहीं को नजरअंदाज करता। सभी जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करने की हमारे हर देख खुशियों में जो गिरजा सदस्य होने नाते हमारे हैं, हम कभी कभी सुसमाचार को लंबी सूची के कार्य सोचते हैं जिसे हमारे अभी भी लंबे कार्य करने की सच्ची में जोड़ना है, जिसे अपने व्यस्त समय में किसी भी तरह शामिल करना है। हम वही करते हैं जो प्रभु चाहता है हम करना करें, और हम कैसे करेंगे, मगर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम क्यों करेंगे। मेरे प्यारे बहनों, यीशु मसीह का सुसमाचार कोई क्या कार्य नहीं, वो एक मार्ग है हमारे स्वर्ग के पिता द्वारा बतलाया गया, जो इस जीवन में खुशी और शांति तक ले जाता और महिमा और संतुष्टि का तक आने वाले जीवन में। सुसमाचार एक ज्योति है जो मरणशीलता में घुस कर और हमारा सामने का मार्ग रोशन करता है। जबकि सुसमाचार को समझना और कैसे होकर कार्य करता है आवश्यक है। सुसमाचार के आनंद, चिंगारी और गौरव क्यों से आता है? जब हम समझ लेते हैं कि हमारे स्वर्ग के पिता ने हमारे जीने का ये तरीका दिया, जब हम याद करते हैं कि हम इसे अपने जीवन का बुनियादी भाग बना लेते हैं, सुसमाचार बोझ नहीं लगता है, उसके बजाय एक आनंद और खुशी बन जाता है, वो बहुमूल्य और मीठा बन जाता है। हमें शिष्यता के मार्ग पर नीचे जमीन देखकर नहीं चलना चाहिए, सिर्फ अपने आगे के कार्यों के बारे में सोचते हुए। हमें धरती की विशाल सुंदरता और प्रेरणा भरे दृश्यों से अनजाने नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा करने के लिए मेरा सुझाव है कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार के क्यों का गौरव, सुंदरता और आज्ञाकारी होना मार्ग निर्धारित करता है और हमें सही मार्ग पर रखता है। आज्ञाकारी होने का मतलब है हमारे कारनामे दोषमुक्त होंगे। वो हमारे आज्ञाकर्ता के छोटे कार्यों को पवित्र कार्यों में अभिषेक करता है। पांचवा, बोले नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। बचपन में जब मैं मुझे भूलना नहीं जो को देखता था, मैं कुछ उस फूल जैसा महसूस करता था, छोटे और मामूली। मैं सोचता था क्या मेरा परिवार या स्वर्ग का पिता मुझे भूल जाएंगे। मैं किसी ये के लिए खास होना चाहता था, याद करने के लायक। वर्षों बाद में उस बच्चे के बारे में कोमलता और दया से देखता हूँ। मुझे भूल लिया नहीं गया था, मैं अब हो जानता हूँ और मैं कुछ और भी जानता हूँ। हमारे स्वामी यीशु मसीह का देवदूत होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ अपने हृदय की सच्चाई और पूर्ण विश्वास से कि तुम भी बुलाई नहीं गई हो, तुम बुलाई नहीं गए हो। चाहे कितनी कठिन तुम्हारे दिन हो, चाहे कितना मामूली तुम महसूस करे, चाहे कितना फिक्र तुम छोटे हो, तुम हो, तुम्हारे स्वर्ग पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं, पर वास्तव में वो तुमसे प्रेम करता है, एक आनंद प्रेम से। सिर्फ उसके बारे में सोचे, तुम जाने माने हो और जगत के कई गौरवशाली, शक्तिशाली और महान लोग तुम्हें याद करते हैं। तुम आनंद फैलाओ और आनंद समय का राजा का प्रेम पाते हो, जो जिसने तरह को रचा और जानता है तुम्हें और तुम्हारे नाम को जानता है। तुम उसके राज्य के पुत्रियां हो। शाम को लिखने वाले ने कहा, जब मैं आकाश को, जो तारे हाथाओं को का कार्य है, और चांद और तारे को जो तू ने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका सम्मान रखे, क्योंकि तूने उसके परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुक्त उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है क्योंकि तुम उनके बच्चे हो। वो तुमसे प्रेम करता है जब तुम कभी अकेला महसूस करते हो या गलती करते हो। परमेश्वर का प्रेम और पुनस्थापित सुसमाचार की शक्ति मुक्ति दिलाती और उदार करती है। अगर तुम सरलता से उनके दिव्य प्रेम को अपने जीवन में स्वागत करते हो, वो किसी भी गांव को साफ करेगा, किसी चोट को चंगा करेगा और किसी भी दुख को कम करेंगे। मेरे प्यारे सहायक संस्था बहनों, तुम जानते नहीं तुम स्वर्ग के कितने करीब हो। जितना तुम कल्पना करते हो उसे किस कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। विश्वास और निजी धर्मता में बढ़ते रहे। यीशु मसीह के पुनस्थापित सुसमाचार को जीवन का नियत रास्ता माने। इस महागिरजा में गतिविधि के उपहार को अपनाए। सहायक संस्था के आशीर्वाद संस्था में सेवा के उपहार को बहुमूल्य समझे। घरों और परिवारों को मजबूत करना जारी रखे और दो को ढूंढते रहे जो तुम्हारी या प्रभु की सहायता चाहते हैं। भाइयों, कुछ बहुत प्रेरणा भरा और पुंजीव है छोटे मुझे बोलना नहीं फूल के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये उन छोटी बातों का चिन्ह होगा जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल और मीठा बनाता है। कभी भूलना नहीं कि तुम्हें धैर्य रखना और सहानुभूति दिखाना है खुद के साथ, कि कुछ बलिदान औरों के बेहतर होता है, कि तुम्हें किसी सोने की पर्ची का इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुश करने के लिए। कृपया कभी भूलना नहीं कि यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हें प्रेरित करेगा और आनंद करेगा। और कभी भूलना नहीं कि तुम्हारे स्वर्ग पिता तुम्हें जानता है, प्रेम करता है और दयान में रखता है। आप हो भी है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके प्यार और सेवा के अनगिनत कार्यों के लिए जो औरों के लिए करते हैं। वो चीज़ों के लिए भी धन्यवाद जो तुम्हें करने वाले हो। सुसमाचार के आनंद को परिवारों, गिरजाघर, समाजों, समाजों और दुनिया के सदस्यों तक लाने के लिए हम आपसे प्रेम करते हैं। यह मेरा प्रार्थना और आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं भूलोगे कि तुम सच में परमेश्वर के राज्य के बहुमूल्य बेटियां हो। हमारे प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम, आमीन।
हमारे प्रिय स्वर्गीय परमेश्वर, हम इकट्ठित हैं बहुत सारे स्थानों में इस बहुत स्पेशल सहायक संस्था के लिए। हम आपके बेटियां आभारी हैं। हम आभारी हैं गॉस्पेल के रेस्टोरेशन के लिए और पुरोहित के चाबियों के लिए। रेस्टोरेशन आपके बेटियों के संस्था के लिए। हम पायनियर बहनों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने वो सच्चाई ढूंढी है और आपकी काम करने में कार्य करने के लिए बहुत बहुत काम किया। आपकी त्याग और उन सेवा करने के लिए। परमेश्वर हम आभारी हैं हमारे बहुत महाप्रधान बैक के लिए और उनकी सीधा शिक्षकों के लिए। हम रेस्टोरेशन के पुरोहित बंधनों के लिए आभारी हैं। परमेश्वर हम बहुत बहुत हम्बल हैं हमारे विश्वास के लिए जिन्होंने आपने गिरजे के महिलाओं को दिए हैं, और हम डालते हैं हमारे हृदय अल्टर के ऊपर कि हम सब कुछ कर सके जो आप हमें चाहते हैं आपके काम के लिए। हम बहुत आभारी हैं आपके पुत्र के लिए और उनकी त्याग और सुसमाचार के लिए, उनके ऊपर विश्वास में हम शक्ति पा सके कि हम अपने शक्ति कर सके। हम आपकी शक्ति के लिए आभारी हैं इस त्याग के लिए। और आज रात हम आज की शिक्षकों प्रेसिडेंट उकडॉर्फ के लिए वो रास्ता दिखाती है हमें और हमें रोशनी देती है और सब देशों को रोशनी देती है। हम आशीर्वाद मांगते हैं हमारे कामों में, हमारे परिवारों और हमारे एक जिंदगियों में। हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हम आशीर्वाद पाएं जब हम इकट्ठे हों आपके काम करने के लिए। हम आपको अपने प्यार देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।